पितामेतितं कोऽयं
संभ्रमो वा उपागतः
किं फलं कस्य चोदेशः
केन वा साध्यते मखः
हरे कृष्ण
हरे
कथ्यतां
कहिए
बतलाइए
मुझे
पिता
मेरे पिताजी
को
क्या
अयम
यह
संभ्रम
बहुत बड़ा काम
वह
आप लोगों के ऊपर
उपागतः
आया हुआ है
किम
क्या
फलम
फल
परिणाम
कस्य
किसके
च
तथा
उद्देशः
हेतु
केन
किस प्रकार
वा
तथा
साध्यते
संपन्न करना है
मखः
यज्ञ समय भाव में अति संक्षेप में आप लोगों के सामने गोवर्धन धारण लीला की कथा प्रस्तुत किया जाएगा अति संक्षेप में आधा घंटे के अंदर। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 24वें अध्याय के 3रा नंबर का श्लोक है। यह श्री भगवान अपने पिता नंद बाबा से प्रश्न कर रहे हैं। भगवान श्री बलराम जी के साथ वृंदावन में विविध बाल लीलाओं को कर रहे थे। तब तक एक दिन उन्होंने देखा कार्तिक का महीना आ चुका है और सभी गोप बहुत भारी तैयारी में है। सब लोग एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है, किसकी तैयारियां हो रही है, सब जगह घर द्वार गली गुच्छा सबकी सफाई हो रही है, बहुत भारी तैयारी साफ सुथरा किया जा रहा है। ये भगवान सर्वअंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी बड़ा ही विनयावत होकर विनम्र भाव से अपने पिता नंद बाबा के पास आए और उनके सामने हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे पिताजी, आप लोगों के सामने कौन बहुत बड़ा भारी काम आ गया है। सभी लोग बड़े उद्विग्न दिखते हैं, बड़े तैयारी में लगे हैं, कोई बहुत बड़ा उत्सव आया है, इसका क्या फल होता है, जो आप करने जा रहे हैं, जो यज्ञ करने जा रहे हैं, उसका क्या फल है, किस उद्देश्य से आप लोग कर रहे हैं, किन साधनों से इस यज्ञ को संपन्न करेंगे, किसके लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। पिताजी आप मुझे बताइए, मैं आपका बेटा हूँ, मेरा अधिकार है आपसे जिज्ञासा करना। तो श्री भगवान पूछ रहे हैं, नंद बाबा अपने परंपरा से आने वाले यज्ञ को संपन्न करने जा रहे हैं। तो साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं, तो अभी भी प्रश्न कर रहे हैं, अपने प्रश्न के औचित्य को भी बतला रहे हैं। आप मेरे पिताजी हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे सुनने की बड़ी उत्कंठा है, जानने की इच्छा है। पिताजी ऐसे तो साधु पुरुष सभी को अपना मानते हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं होता और कोई भी बातें बता देते हैं, किसी से भेदभाव नहीं रखते, और ऐसे साधुओं का कोई शत्रु नहीं होता, कोई बहुत घनिष्ठ मित्र भी नहीं होता, सबके साथ उदासीन व्यवहार करते हैं। छिपाने की बात नहीं रहती, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मैं आपका अपना हूँ, मुझसे तो कुछ छिपाने की औचित्य ही नहीं है। आप कृपा करके मुझको बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तो अगर मानो नंद बाबा पूछे कि तुमको जानने की क्या जरूरत है, क्यों जानना चाहते हो, उत्सव होगा, भोज बनेगा, अनेक प्रकार का मिष्ठान बनेगा, खाना किस उद्देश्य से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको जानकर क्या करोगे? बच्चों को तो उत्सव में भोजन से मतलब है, और कुछ कोई उत्सव में नाच होगा, गान होगा, उसको सुनना। कह रहे हैं कि नहीं, मेरी जिज्ञासा है। जिज्ञासा का औचित्य बताते हैं कि संसार में कुछ लोग ऐसे ही बिना समझे बुझे कुछ भी करने लगते हैं, जानते ही नहीं कि इस कर्म का क्या फल है, इतना अथक परिश्रम करके करते रहते हैं बिना समझ के। तो हमारी जिज्ञासा है कि आप लोग जिस क्रिया योग में लगे हुए हैं, जो काम करने जा रहे हैं, वो विचारित है, शास्त्र सम्मत है, साधु पुरुषों द्वारा सराहनीय है, अथवा लोक में ऐसे ही अंधविश्वास में चल पड़ा है, बस उसी में लगे हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो कह रहे हो वो वेद शास्त्र सम्मत है, उसको बड़े लोग आदर करते हैं। तब नंद बाबा कुछ कहते हैं कि देखो बेटा, हम लोग देवराज इंद्र की आराधना करेंगे, क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं, वो मेघों के स्वामी हैं, उनके ही कृपा से बारिश होता है, और उस बारिश से अन्न उत्पन्न होता है, घास होता है वन में, जिसको खा करके पशु लोग दूध देते हैं, हम लोग पशु पालन करने वाले हैं, खेतों में भी जो अनाज है इंद्र की कृपा से है। तो मेरे प्यारे पुत्र, हम लोग साल में एक बार तैयारी करके इंद्र की पूजा कर देते हैं, और भगवान इंद्र प्रसन्न होकर समय पर वर्षा करते हैं, तो इससे अन्न उत्पन्न होता है। तो देखो, हम लोग जो कुछ भी साल भर में काम करते हैं, कमाते हैं, उन सबका फल इंद्र को अर्पित करते हैं, और उन्हीं के उसी यज्ञ का अवशेष हम साल भर खाते रहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो कुछ भी करना चाहिए उसको अपने देवताओं की आराधना कर देनी चाहिए। तो हम इंद्र के यज्ञ करते हैं और उनके प्रसाद को पाते हैं। तो वो पूछ दिए थे कि बेसमझ है, बिना मतलब के कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत है। तो नंद बाबा अब इसका उत्तर दे रहे हैं कि यह एवं विशिष्ट धर्मम पारंपरिया गतम न रह काम लोभा भया द्वेषा तवई प्राप्नो शोभनम। देखो बेटा, यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। जो व्यक्ति काम से, लोभ से, भय से, द्वेष से, किसी कारणवश परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता है। मान लो इस कारण से छोड़ दे कि इनका पूजा करने में, उत्सव करने में कुछ धन खर्च हो जाएगा लोभ से, या ये बचा रहेगा तो हमारे काम में आएगा, इसमें 10,000-20,000 बिना मतलब कि क्यों खर्चा करें, बचा रहेगा तो हमारे काम में आएगा, लोभ होगा, अथवा किसी देवता के प्रति कोई द्वेष भावना हो कि हम क्यों देवताओं की आराधना करें, ये सब ठीक नहीं है। परंपरागत धर्म को काम, लोभ और द्वेष से छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ देता है परंपरागत धर्म को तो उसे मंगल नहीं होता। तो इस प्रकार जब भगवान बोले तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बचो निशम्य नंदस्य तथान एसाम बजौ कसाम इंद्राय मनु मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केशव संबोधन कर रहे हैं कृष्ण के लिए, केशव नाम बोल रहे हैं, पर है केशव का अर्थ है जो ब्रह्मा शिव के भी कंट्रोलर है, वह भगवान जो ब्रह्मा शिव पर भी शासन करते हैं। वे नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से बोलने लगे। अब एकदम उद्देश्य बना लिए कि इंद्र को चिढ़ा देना है, चिढ़ाना है इंद्र को, क्रोध दिला देना है। इंद्राय मन्नुम जनयन, इंद्र को क्रोध उत्पन्न कराने के लिए पितरम प्राह केशव, अपने पिताजी से केशव बोले। केशव के अनेक अर्थ है, सुंदर केश वाले, अथवा एक महत्वपूर्ण अर्थ है जो शिव और ब्रह्मा को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनको केशव कहते हैं। जो सबके अध्यक्ष है, सुप्रीम अध्यक्ष है वो केशव, सब कुछ संभालने के लिए अपने मन बना लिए कि देख लूंगा इंद्र की कितनी शक्ति है, इंद्र कुछ इस बार यज्ञ में पूजा नहीं करना है। तब भगवान कहते हैं कि पिताजी, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जीवन धारण करता है, कर्म से जन्म लेता है, कर्म से ही मर जाता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, कोई भी जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है, कर्म के कारण वो धनी गरीब या रोगी स्वस्थ शरीर प्राप्त करता है। कहीं परिवार में देखा जाता है कि कोई जन्म से ही पोलियो से ग्रसित है, लंगड़ा हो गया, कोई अंधा है, कोई स्वस्थ है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। तो ये सब कर्म का फल है, पूर्व कर्मों का फल। और वर्तमान में भी जो अच्छा कर्म करता है वो सुखी रहता है, एक कर्म का फल है। कर्म से ही व्यक्ति को सुख दुख मिलता है, कर्म से ही जन्म मृत्यु। तो यदि कर्म ही सब कुछ करता है, कर्म के कारण ही जीव को सुख दुख मिलता है, तो फिर दूसरा ईश्वर कहाँ से आ गया इंद्र? अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, गोपालन नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, तो इंद्र भोजन पहुंचा देगा क्या? क्या कर देता है इंद्र का, क्या आवश्यकता है? किमिंद्रेण भूतानाम स्वस्व कर्मानुवर्तिनाम। जब सारे प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं तो फिर इंद्र की क्या आवश्यकता पड़ गई? और जब हमारे पूर्व संस्कार और कर्मों के अनुसार ही हमारा फल मिल सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता, तब इंद्र की क्या जरूरत है, क्या प्रयोजन है? सभी जीव अपने स्वभाव पूर्व संस्कार के अधीन है। स्वभाव तंत्रो ही जन, स्वभाव मनुवर्तते, स्वभाव मस्तमिदम सर्वम सदेवासुर मानुषम। सारा जन समुदाय, संपूर्ण जीव प्राणी, चाहे वो देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, सभी कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान कर्म की प्रधानता देने लगे। बोलने में तो वेद वक्ता है, ऐसी बातें करने लगे, बहुत सुंदर प्रवचन किए हैं। समय के अभाव में हम सब कुछ नहीं कह पाएंगे। फिर कहते हैं कि जैसे पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म का पालन करे, कर्म का आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, उन कर्मों को करे, अपने अपने आश्रम, अपने अपने वर्ण के अनुसार सबका कर्म निर्धारित है। वर्णाश्रम धर्म का प्रवचन कर रहे हैं भगवान। तो न तस्माद कहते हैं, अंजसा जेन वर्ते तो तदेवास्य ही दैवनम दैवतम। तो हम लोगों को अपने वर्ण के अनुसार काम करना चाहिए। हमारा काम खेती है, पशुपालन है, तो उसी से हमारा जीवन चलेगा, दूसरे का हम नकल नहीं कर सकते। पूजा पाठ साधु संन्यासी ब्राह्मण करें, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति अपने कर्म को छोड़ देता है उससे उसको लाभ नहीं मिलता। दूसरे की उपासना करता है तो भगवान उदाहरण देते हैं कि आजी वही तक तरम भावम यस्पन्यम मुपजीवती न तस्मात बिंदते क्षेमम जारम नारिशती जथा। जैसे विवाहिता स्त्री अपने पति को छोड़कर जार पुरुष का सेवन करती है और व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, अपने पति की सेवा न करके दूसरे पुरुष के फेरे में पड़ती है तो उसको सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। वैसे ही मनुष्य अपने आजीविका चलाने वाले देवता को छोड़कर दूसरे की उपासना करता है तो उसे कभी सुख नहीं मिलता। तो प्रश्न हो सकता है ना कि हम लोगों का कौन देवता है भाई, बड़ा लंबा प्रवचन किया। तो कहते हैं देखो अलग अलग धर्म है। वर्तित ब्राह्मणा विप्रो राजन्यो रचया भुआ वैशस्तु वार्तया जीव जीवे क्षुद्रस्तु दीर्घ सेवया। चारों वर्णों का अलग अलग धर्म है। ब्राह्मण वेद पाठ अध्ययन करे, पढ़े पढ़ावे, पृथ्वी का पालन करे, क्षत्रिय पृथ्वी का पालन करे, वैश्य खेती गृहस्थी से या गो रक्षा से पालन करे, और शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों की सेवा करे। कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदम तुर्य मुच्यते वार्ताम चतुर्विधा तत्र वयम गो वृतयो निशम। तो हम लोग किस वर्ण के हैं? हम लोग वैश्य हैं। हमारा काम है कृषि वाणिज्य गोरक्षा, खेती करना। हमारे वृत्ति चार प्रकार की है वैश्यों की, अलग अलग वृत्ति को अपनाते हैं। वैश्य में कोई एक विभाग खेती करता है, दूसरा दुकानदारी वाणिज्य व्यापार, तीसरा गोरक्षा, और चौथा कुछ बैंकिंग काम चलाते हैं, सूद ब्याज पर अपना जीवन चला लेते हैं। तो इन चारों में हम लोगों का जीवन गोरक्षा है, हम लोग गोप हैं। तो सब मिलाकर भगवान समझाना चाहते हैं कि देखिए पिताजी, हमारे पास न कोई बहुत बड़ा राज्य है, न बहुत जनपद है, न घर है। हम लोग तो नित्य वन में रहने वाले हैं, पहाड़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। हम लोगों को क्या बहुत बड़ा राज्य है? न पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम बनो कसस्ता बन शैल निवासी न। हम लोग अपने गाय लेकर जहाँ घास मिलता वहाँ रहते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं, जमुना के तट पर अपना निवास कर लेते हैं। अभी महावन में थे, महावन से वृंदावन आए, वृंदावन से नंदगांव, बदलते रहते हैं। हम लोग कोई स्थायी गांव थोड़े हैं। हम लोग गोपों गायों के अनुसार अपना स्थान बदलते हैं। तो न पूरे जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम, न हमारा गांव है, न कोई नगर है, न घर है। नित्यम बनौ कसात, हे दात, हे पिताजी, हम लोग वनवासी हैं, नित्य वन में रहते हैं, वन शैल निवासी न, वन में रहते हैं, पहाड़ के निकट रहते हैं। हमारा निवास यही जंगल पहाड़ है, तो हमारा देवता भी इसी अनुरूप होना चाहिए। तो कहते हैं हम, हमारी इच्छा है, इसलिए हम लोगों को ऐसा काम करना, ऐसी पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे गाय, ब्राह्मण और इस ब्रजमंडल में सबसे श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज सब संतुष्ट हो जाए। तस्मात् गवाम ब्राह्मणान अर्थे चार अभ्यता मखः। अतः हम लोगों को ऐसा यज्ञ करना है जिसमें गायों को खूब सेवा की जाए, खूब हरी हरी घास खिलाया जाए, ब्राह्मणों की सेवा की जाए और गिरिराज जी की सेवा की जाए। तो कहते हैं कर लेंगे बाद में। नहीं नहीं, अब भी जो तैयारी किए हैं इंद्र जग के लिए उन्हीं सामग्रियों से गिरिराज की सेवा करना है। इंद्र जग के लिए जो सामग्री तैयार की गई है, जो मिष्ठान पकवान बनेगा बनने दीजिए, लेकिन इस बार हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गिरिराज की पूजा करेंगे। पच्यंता विविधा पाका सुपानता पायसादय सयावा उपसकुल्य सस्कुल्य सर्वदोहस्य गृहताम। ते अनेकों प्रकार के पकवान बनाएंगे, 56 भोग, खूब खीर, हलवा, पुआ, पूरी, मूंग की दाल, सभी एकत्र किया जाएगा, जितने ब्रज में दूध है सबको एकत्रित किया जाए और उससे मिष्ठान बनाया जाए, और फिर हम लोग ब्राह्मणों को बुलाएंगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, उयंतम अग्नय सम्यक ब्राह्मण ब्रह्मवाद भी, ब्राह्मणों को बुलाकर हवन कराया जाएगा, खूब भली भांति हवन कराएंगे। अन्नम बहु विधम तेभ्यो देयम यो धेनु दक्षिणा, और खूब सुंदर पकवान छप्पन भोग बनाएंगे, ब्राह्मणों गिरिराज जी का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाएंगे और उनको दक्षिणा देंगे। और फिर जब गिरिराज जी की पूजन हो जाएगा, ब्राह्मणों को खिला लेंगे, तब फिर सबको खिलाएंगे, जितने चंडाल पतित कुत्ते तक को सबका आदर किया जाएगा, सबको खिलाएंगे, सबको सबकी सेवा करेंगे, कहते हैं कुत्ते चंडाल तक की सेवा करेंगे। यवसम च गवाम दत्व गिरे दियताम बलि अन्येभ्य चासु चंडाल पतितेभ्य यथार्हत, जिसको जो चाहिए वो देंगे, गाय को यवस देंगे भोजन देंगे और गिरिराज जी को भोग लगाएंगे, सब फर्स्ट क्लास श्रृंगार करेंगे, जितने ब्रज में है स्वलंकृता भुक्तवंत, खूब सुंदर साफ स्वच्छ कपड़ा पहनेंगे, स्त्रियां अपना श्रृंगार करेंगी, वस्त्र गहना पहनेंगी, सब पहन धज कर एकदम सुंदर वेश में आएंगे, प्रसाद खाएंगे, और इसके बाद हम लोग गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, बिना खाए पिए उपवास नहीं। कहते हैं स्वलंकृता भुक्तवंत स्वनुत्ता सुवास सह प्रदक्षिणम तकुलत गो विप्रा नल पर्वतान, फिर हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। और ऐसा जब किया जाएगा तो एतन मम मतम तात हे पिताजी यह मेरा मत है, इतना ही काफी है, मेरा मत है। नंद बाबा इतना प्रेम करते थे अपने बच्चे से कि चाहे दुनिया के सभी लोग मिलकर कुछ कहें, लेकिन एक नंद लाला कन्हैया कहते वही काफी है। तो अब कह दिए एतन मम मतम तात हे तात यह मेरा मत है, मेरा मत यह है, ऐसे आप तो मुझसे बड़े हैं, पिता है, क्रियता में यदि रोचते आप कीजिए, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो कीजिए, ऐसे मेरा तो मत यही है, आपको जो उचित लगे कीजिए। यह कहकर फिर कहते हैं अयम जो मैं कह रहा हूं वो गो ब्राह्मण अत्रिणाम मह्यम च दैतो मख, दो बार अपनी बात कह दिए, शुरू में कहे कि ये मेरा मत है, और फिर कहते हैं अयम यह यज्ञ गो ब्राह्मण अद्रेणाम गाय को ब्राह्मणों को और गिरिराज जी को और मह्यम मुझे भी, मह्यम च मुझको भी दैतो मख यह प्रिय लगेगा, यह यज्ञ ऐसा यज्ञ किया जाएगा तो ब्राह्मण प्रसन्न होंगे, गाय प्रसन्न होंगी, गिरिराज जी प्रसन्न होंगे और मैं प्रसन्न होऊंगा, और आपको अच्छा लगे तो कीजिए। तो अब जब ब्राह्मण की प्रसन्नता मिलेगी, गिरिराज जी प्रसन्न होंगे और आप प्रसन्न होंगे, तब क्या कहना है। भगवान एकदम इंद्र को क्रोध दिलाना चाहते थे, उनका यही उद्देश्य था। अब नंद बाबा कहे ठीक है बेटा, जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे इंद्र कितना नाराज होता है। तुरंत नंद बाबा सारे ब्रजमंडल में सूचना भिजवा दिए कि इस बार इंद्र की पूजा नहीं करना है, अब हम गिरिराज की पूजन करेंगे, जितनी सामग्रियां तैयार है सब लोग गिरिराज जी में आ जाओ। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया गया, गिरिराज जी में सब लोग अपना बनाए हुए पकवान को लेकर आए और बड़े आदर के साथ गौओं को हरी हरी घास खिलाकर लाया गया, और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन के साथ पूजन प्रारंभ किए गिरिराज जी के, और वहां सभी जैसे कहे थे कृष्ण वैसे ही अलंकृत होकर स्त्रियां आई, गोपियां भली भांति श्रृंगार करके बैल के गाड़ी पर चढ़ करके आई और आ करके भगवान लीला गान करते हुए वहां पूजा चालू हुआ, और जितने पकवान था सब गिरिराज जी में भोग लगा। देखिए आज भगवान अद्भुत लीला करने जा रहे हैं, जब भोग अर्पित हो गया तो भगवान एक रूप में गोप सखाओं के साथ खड़े हैं और दूसरे रूप में गिरिराज जी के ऊपर उपस्थित हो गए एकदम प्रकट। कृष्ण स्तन्यन्यतम रूपम गोपिभ्रश विश्रम्भ्राम गतः शैलोस्मृति ब्रुवन भूरी बलि मादत बृहद बपु। भगवान गिरिराज जी के ऊपर एकदम प्रकट रूप में होकर कहने लगे, देखो शैलोस्मृति मैं गिरिराज हूँ। एकदम प्रकट हो गए तो एक रूप में कह रहे हैं, देखो मैं गिरिराज हूँ, मुझे भोग अर्पण करो, और दूसरे रूप में कहते हैं, देखो देखो गिरिराज जी प्रकट हो गए। आप लोग पहाड़ समझते थे ना, देखिए देखिए प्रकट हो गए। तो सब गोप सखा सभी लोग प्रसन्न होकर कह रही, सचमुच इंद्र कभी आया था बिना मतलब के, बेकार इस मूर्ता में पड़े हुए थे, देखिए हमारा देवता आप लोग पहाड़ कहते हैं प्रकट हो गए। तो अब तो बहुत प्रसन्नता हुई, सब प्रणाम किए। इसके पहले भगवान कहे कि भोग लगाया जाए गिरिराज जी को। तो गिरिराज जी को जब भोग लगाया गया तो प्रकट होकर के गिरिराज जी उन भोगों को स्वीकार करने लगे। शैलोस्मित बुरानीति बलिम आदत बृहद बपु। बलिम आदत जो बलि जो उपहार उनको दिया जाता था उसको प्रकट अपने हाथ में लेकर खाने लगे। गिरिराज जी बड़े बृहद रूप में प्रकट थे, एकदम बॉकेट के बॉकेट खीर उठा उठा कर पीने लगे और टोकरी के टोकरी पूरी और सब मिष्ठान खाने लगे। सब बच्चे देख रहे हैं गोप सखा तो कहते हैं कि अरे कन्हैया कौन देवता है, राक्षस है क्या, हम लोगों के लिए कुछ छोड़ेगा भी नहीं लगता। इंद्र की पूजा करते थे तो हमको प्रसाद भी बचता था और ये तो सब खा रहा है, जहां से दो सब उठा उठा कर खा रहा है। तो भगवान कहे आगे कि आप लोग प्रणाम कीजिए ना ये देवता का, या अभी चमत्कार देखिए, सारा बर्तन खाली हो गया, सब बकेट का खीर पी गया, सारा पूरी खा गया, सारा भात चावल सब्जी सब सब खाली रखा हुआ है। तब तक भगवान प्रणाम करने को कहते हैं, तस्मै नमो ब्रज जनई सह चक्रे नात मनात मने। भगवान सबको कहे कि आप प्रणाम करो, सब लोग प्रणाम किए। अहो पश्यत शैलोसो रूपी नोनु ग्रहम व्यधात। तब तक जब सब लोगों को आश्चर्य हो रहा है, प्रणाम कर रहे वास्तव में प्रकट देवता है, सब प्रणाम कर रहे हैं आश्चर्य के साथ, प्रणाम करके जब उठते हैं तो सारा बर्तन भरा हुआ है, सबको प्रसाद मिला। इस प्रकार भगवान ऐसी सुंदर लीला किए, अद्भुत, सारे ब्रजवासी बड़ी आनंद में जान गए कि वास्तव में चमत्कारिक देवता है। इतना सुंदर प्रकट होकर के हमारा भोग स्वीकार किया और देखिए प्रसाद दिया, सब खाए और खा पी करके सब बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान नंद बाबा आदि बूढ़ों के साथ विधिवत पूजा करके और फिर ब्रज में लौटे। संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी कह दिए कि सह कृष्णा ब्रजम ययु, सारा पूजा उजा करके फिर ब्रज में लौटे। लेकिन अभी कथा बाकी है, ब्रज में तो आ गए लेकिन इधर इंद्र को जब पता चला कि इस बार हमारी पूजा की अवहेलना कर दिए सब गोप, और एक छोटे से बच्चे के कहने पर गिरिराज की पूजा किए, तो इंद्र सीधे क्रोध में भर कर एकदम क्रोधित होकर के, वो तो त्रिलोकी के ईश्वर के अहंकार में रहते थे, एकदम तिलमिला गए और प्रलय कालीन मेघों को आदेश दिए कि जाकर ब्रज में बारिश करो। गरम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम इंदम प्राचोदयत क्रोधो वाक्यम चाहेस मान्युत। तो आदेश दिए कि अहो श्री मद महात्म्यम गोपा नाम काननौ कसाम कृष्णम मत तुम पास जय चक्रो देव हेलना। अहो इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड हो गया, सचमुच इनको धन की नशा हो गई है। देखो भला किसके बल पर, एक साधारण बच्चे के बल पर मुझ देवराज का अपमान किए, थोड़ा सा भी इनको भय नहीं है। कृष्ण तो बकवादी है, वाचालम बालिशम स्तब्धम अव्यम पंडित मानिना पंडित मानिनम कृष्ण मत मुपासित्य गोपा में चक्रुर अप्रिय। इस साधारण मनुष्य है, देखिए इंद्र एकदम अहंकार में भूल गए, कहने लगे कि ये बकवादी है, नादान है, अभिमानी है, मूर्ख है, अपने को बहुत बड़ा मानता है। देखिए उसकी सहारा लेकर इन गोपों ने, इन अहिरों ने हमारा अपमान किया, जाकर के पूरे ब्रज को डुबा डालो। एकदम मूसलाधार बारिश, हाथी के सूर के बराबर बारिश का धार बरसता था। भेजे और कहे मैं भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, वहां चलो, मैं पीछे से ऐरावत पर चढ़कर आ रहा हूं, चलो ब्रज को डुबा दो, मैं देखता हूं कि इन लोगों का क्या होता है। और मरुदगणों के साथ लेकर आता हूं, खूब हवा भी चलेगा, एकदम ठंडा और बारिश। तो यह आदेश पाकर सारे मेघ आकर बरसना प्रारंभ किए, बिजलियां चमकने लगी, आंधी तूफान सब आ गया। तो इस प्रकार कुछ पता नहीं चलता था कि कहां क्या है, किसी को देखना मुश्किल हो गया। इतना पानी होने लगा, इतनी बिजलियां कड़कने लगी, अंधकार हो गया, किसी को कुछ ऊंचा नीचा का पता नहीं चल रहा था। झंझावात के झकोर से सब लोग परेशान व्याकुल होकर सब कृष्ण के शरण में आए और आकर कहने लगे, हे प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, देखो हम लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करके गिरिराज की पूजन किए, इंद्र की अवहेलना कर दिए, निश्चित रूप से इंद्र क्रोधित हो गए, अब हमारी रक्षा तुम ही कर सकते हो, एकमात्र तुम ही हमारे रक्षक हो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथम गोकुलम प्रभो, हे कृष्ण हे महाभाग, एकमात्र इस ब्रज के रक्षक आप हो। त्रातु मरहसि देवानः कुपिता भक्त वत्सलः, इस कुपित देवता से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। देखो इतना बारिश हो रही है, पत्थर बरस रहा है, इतना क्रोध में इंद्र है कि हम लोग कैसे इसे बच सकते हैं, हमारी रक्षा करो। तो भगवान देखे ब्रजवासियों के दुख को तो सोचने लगे कि वास्तव में सारे ब्रजवासी मेरे प्रति आश्रित हैं, मेरे कहने से वास्तव में लोग गिरिराज की पूजा किए, मैं ही इनका एकमात्र रक्षक हूं, तो अवश्य मैं अपनी जोग माया से इनकी रक्षा करूंगा। गोपाए स्वात्म जोगे न स्वयं में व्रत आहित, क्योंकि मेरा व्रत है संतों की रक्षा करना, साधुओं की रक्षा करना। तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन नाथम मत परिग्रहम गोपाए स्वात्म जोगे न स्वयं में व्रत आहित, निश्चित रूप से अवसर आ गया, अब रक्षा करना है। तो भगवान कहे कि आप लोग चलिए गिरिराज जी के शरण में, जिनकी पूजा की वो रक्षा करेंगे। सबको लेकर आइए, सारे गायों को लेकर आइए, सारे गोप गोपी सब लोग आइए। भगवान के कहने में सब वहां आ गए और भगवान सबके सामने ही खेल खेल में गिरिराज पर्वत को, जैसे साधारण छोटे से पौधे को बरसाती छत्ता होता है, टेम्पोररी बरसात में उत्पन्न होता है, एकदम मुलायम, कुकुरमुत्ता उसको कहते हैं जीव विज्ञान में, तो उसको जैसे बच्चे उखाड़ लेते हैं सहज, वैसे ही गिरिराज को उखाड़ लिए बाएं हाथ से, उखाड़ करके जब गिरिराज जी के ऊपर आने से जो बहुत बड़ा हॉल बना उनके अंदर, उसमें कहे सारे गोपों को गोपियों को सबको लेकर आ जाइए, और बाएं हाथ से अपने कनिष्ठ उंगली पर भगवान धारण कर लिए गिरिराज को। तो कहे आप लोग आइए, सब लोग आइए और आराम से इसमें बैठिए, आप लोग शंका मत कीजिए कि यह गिरिराज मेरे इस कनिष्ठ उंगली से गिर जाएगा, ऐसी चिंता मत कीजिए, आप निर्भय यहां रहिए। तो इस प्रकार भगवान ने उनको साहस बनाया और सब लोग उसमें आ गए, सब उस बड़े हॉल में घुस गए जो 22 किलोमीटर का हॉल बना बहुत बड़ा। तो इसके अंदर आकर सुख पूर्वक रहने लगे, भगवान की जोग माया को देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। एकदम विश्राम तक नहीं किए, सात दिन सात रात निरंतर पर्वत को उठाए रखे, एक डेग भी हिले डुले नहीं, निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प कृष्ण जोगानुभावम तम निशाम्यन्दो ति विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान मेघान सन्निवारय। जब इंद्र को पता चला कि तम सारे ब्रजवासी सुरक्षित है, कुछ भी उनका नहीं बिगड़ा, तो उनका अहंकार चूर्ण हो गया, उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ, सारा अहंकार चूर्ण हो गया। तो इंद्र मेघों को फिर आदेश दिए, तुम लोग अपने अपने स्थान में जाओ, रुको, अब कुछ करने में दम नहीं है। संत लोग कहते हैं, दूसरे पुराणों में कथा है कि मान लीजिए गिरिराज जी के अंदर आने वालों के तो कुछ नहीं बिगड़ा, बाकी ब्रज के गांव तो बह गए होंगे, और यहाँ से जमुना जी जल को लेकर आगे बढ़ी हुई तो आगरा के तरफ कानपुर उधर सब डूब गया होगा, क्या हुआ होगा जो भी है जमुना के तट पर आए। तो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि भगवान सब व्यवस्थित ढंग से सब कुछ किए थे। एक बार की कथा है, दूसरे पुराण में है, महात्मा लोग सुनाते हैं कि एक बार पार्वती जी की इच्छा हुई कि ब्राह्मणों को जिमाया जाए, खिलाया जाए, तो भगवान शिव से कहा करते थे कि आप कभी किसी को खिलाते नहीं, गृहस्थ होकर कुछ ब्राह्मणों को बुलाइए। तो कहे कि अरे तुम चुपचाप रहो, ब्राह्मणों के फेरे में मत पड़ो, बहुत खाते हैं। तो कहे नहीं बुलाइए, तो कहे ठीक है, तुम्हारे पास ज्यादा ताकत है तो एक ब्राह्मण को बुलाता हूँ। तो बुला दिए उनको, अगस्त जी को। तो अगस्त जी बैठ गए खाने, और लगे खाने, तो पार्वती जी का तो जितना किचन में जो तैयार होता सब खाते जाते, दौड़ दौड़ कर सब जुटाने लगे। तो अब एकदम कांप गई, कहने लगी मैं नहीं जानता था वास्तव में इतने ब्राह्मण खाते हैं, अब क्या किया जाए। अब तो मेरे पास तो एक उपाय है, भगवान का स्मरण करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं, वही कुछ कर सकते हैं। तो शिव पार्वती दोनों स्मरण किए कि प्रभु इस ब्राह्मण को भूखा छोड़ना तो मुश्किल है अब, लेकिन आप कोई उपाय कीजिए। तब तक एक छोटे बटु ब्राह्मण के रूप में भगवान आए, और आते ही कहे भोले बाबा भोज चल रहा है, मुझे भी खिलाइए, बैठ गए। तो कहे लो अभी एक को ही खिला नहीं पाए, दूसरा आ गया। तो कहे कि देखो एक को तो बुलाया गया, एक आकर बैठ गया। तो पार्वती जी बड़ा चिंतित हुई, लेकिन अब तो खिलाना ही पड़ेगा। तो भगवान के सामने भी रखा गया है, तो भगवान तुरंत एक आध पूरी खाकर और वही आचमन करने लगे, हो गया। तो अगस्त जी कह रहे पीछे आए और तुरंत उठने लगा, तो पंक्ति भंग कर दिया, उठ गए भगवान। तो कहे बस बस रहने दीजिए, अब नहीं खाऊंगा। तो अब पानी भी चाहिए उनको। तो भगवान मुस्कुरा रहे, अगस्त जी देखने लगे कि ये कौन है। तो भगवान उनको इशारा किए बाद में पानी पीजिए, अब चलिए। तो अगस्त जी तो भोजन कर लिए थे वहां, जो भी किए, अभी पानी पीना बाकी था। तो यहाँ जब इंद्र बारिश करने लगे, तो भगवान उनको बुला दिए कि जो भी पानी है आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आप इसको पी जाएंगे। और सुदर्शन को नियुक्त करके गिरिराज के ऊपर एक बूंद भी बारिश नहीं हो रहा था, ऊपर जल जाता था। इस तरह पूर्ण सुरक्षित ब्रजवासियों की रक्षा किए, इंद्र का अहंकार चूर्ण हो गया। इसके बाद भगवान गिरिराज जी को यथा स्थान रख कर कहे कि अब तो बारिश खुल गया, आप लोग निकलिए और अपने अपने स्थान में चलिए। इसके बाद सबको निकाल कर भगवान पूर्वत गिरिराज जी को रख दिए। सभी लोग बड़े ही आदर भाव में, बड़े ही आश्चर्य में कृष्ण के इस अद्भुत लीला को अपने आंखों से देखे थे। यदि कुछ गोप लोग कृष्ण पर भरोसा नहीं कर रहे थे, अपना लाठी भी लगाए थे, लेकिन उसमें कोई दम नहीं था, स्नेह में। इसके बाद आगे की कथा करते हैं कि उपनंद जी एक मीटिंग बुलाए, और उस मीटिंग में घोषणा किए कि आज के बाद नंदलाला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। इतना बड़ा काम किया हम लोगों का, तो रक्षा किया अनेकों बार, कहीं भी किसी के घर माखन मांगे, कुछ भी कहे, इसको देना है, कोई सब लोग इसका आदर करेंगे। नंद बाबा को याद आ गया, बतलाने लगे कि मैं आप लोगों से छिपा लिया हूँ, लेकिन इनका नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी आए थे और उन्होंने बताया था कि यह लड़का निश्चित रूप से ब्रजवासियों की रक्षा करेगा। सब लोग उनके पूर्व लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं कि देखो केवल 6 दिन का था तो पुतना जैसी राक्षसी का वध किया, देखो वो स्तन पिलाने आई, विष पिलाने के लिए आई, लेकिन वो मारी गई, केवल 3 महीना के अवस्था में सकट भंजन किया, और देखो त्रिणावत दैत्य इसको लेकर उड़ गया था, उसका गला घोट दिया, और देखो अर्जुन वृक्ष जब माँ यशोदा इसको उखल में बांधी थी तो पेड़ उखाड़ दिया, और बगुले के रूप में एक दैत्य आया था तो उसका भी अपने हाथों से उसका ओट पकड़कर फाड़ दिया, फिर दैत्य एक दैत्य बछड़े के रूप में घुस कर आया, उसका वध किया, कैथ के पेड़ पर पटक कर उसको मार डाला, और फिर आगे कहते हैं कि देखो धेनुक का वध किया तालवन में, और धेनु का वध कराया बलराम जी से। कृष्ण और बलराम वास्तव में बहुत बड़े बलवान हैं, दवानल से रक्षा किया, पर लंबासुर का वध किए बलराम, सब याद कर रहे हैं। कालिये कितना विषैला सर्प था, उसको निकाले, वास्तव में नन्हा सा बालक 7 दिन गिरिराज को धारण किया, अति आश्चर्य का विषय है। हमको तो शंका हो रहा है, वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं है, निश्चित रूप से कोई देवता है। तब नंद बाबा गर्गाचार्य जी की बात करने लगे कि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि हर युग में आता है, इसके पहले वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था, लोग इसको वासुदेव कहते हैं, इस रहस्य को जानने वाले। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि आप लोगों की रक्षा करेगा, गोपों का गायों का रक्षा करेगा, इसकी सहायता से आप लोग भारी भारी विपत्तियों से बच जाएंगे। इन सब रहस्यमय बातों को नंद बाबा बताए, सारे ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए कृष्ण के महात्म को सुनकर और गर्गाचार्य जी की रहस्यमय बात को सुनकर। इसके बाद आगे के अध्याय में 27वें अध्याय में वर्णन है कि देवराज इंद्र अत्यंत ग्लानि के साथ गिरिराज जी में आए और कृष्ण के चरणों में गिर करके क्षमा याचना किए, बहुत सुंदर स्तुति किए, भगवान के चरणों पर अपना सिर रखे, मुकुट रखे, बहुत सुंदर स्तुति किए हैं, भगवान की महिमा का वर्णन किए हैं कि हे नाथ मैं आपके रहस्य को नहीं जान पाया, मुझे माफ कीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं स्वर्ग के मद में पागल हो गया था, आपके प्रति अपराध किया, मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के विषय में बिल्कुल अनजान हूँ, नहीं जानता हूँ, आप कृपा करके मुझ मूर्ख का अपराध क्षमा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे फिर कभी ऐसा दुष्ट अज्ञान न घेरे, ऐसा न हो कभी। संतो प्रभो अर्था सती मूढ़ चेतसो मयम पुनर भूल मतरी से मे सती, ऐसा अज्ञान मुझे न आए। इस प्रकार क्षमा याचना किए, बहुत प्रार्थना किए और कहे कि प्रभु आप मेरी आत्मा है, गुरु है, सर्वस्व है, आपने कृपा करके मेरे अहंकार को चूर्ण किया है, मैं आपके शरण में हूँ, चाहे कितना हूँ बुरा हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन हे नाथ मैं आपका हूँ। देवताओं की वास्तव में यही विशेषता है, भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। तो इंद्र इस प्रकार जब स्तुति कर लिए तो ठीक उसी समय गोलोक से आई हुई गायें श्री कृष्ण का अभिषेक की कामधेनु, और कहे कि हे प्रभु इंद्र त्रिलोकी का इंद्र भले हुआ करे, लेकिन हमारे स्वामी हमारे इंद्र तो आप हैं, अतः आप ही गौ ब्राह्मण और साधु जनों के रक्षा के लिए इंद्र बन जाइए। इस प्रकार सब लोगों ने उनका आदर किया, देवराज इंद्र ऐरावत की सूर से लाई हुई आकाश गंगा के जल से उनका अभिषेक किया, गोलोक की गाय अपने थन से दूध की वर्षा करके भगवान का अभिषेक की, और वहीं सबके सामने देवराज इंद्र ने उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया कि वास्तव में आप गायों के रक्षक हैं, आपका नाम गोविंद है। इस प्रकार वहां आए हुए समस्त देवता, ऋषि, मुनि, देवर्षि, नारद आदि सब लोग आकर भगवान के निर्मल जस का गान किए। वहां अप्सराएं आनंद में भरकर नृत्य करने लगी। गिरिराज के तलहटी में कृष्ण का बहुत आदर हुआ। सभी देवता पुष्पों की वर्षा किए। जितने देवता थे सभी कृष्ण के स्तुति किए। ऊपर से स्वर्ग से लाए हुए नंदन वन के पुष्पों से वर्षा किए। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और समस्त गांवों के स्तनों में अपने आप दूध भर गया। जब भगवान को गोविंद बनाया गया तो सारी गायें दूध से भर गई। नदियों में विविध रसों का बाढ़ आ गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में वृक्षों में मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए खेतों में अनेक प्रकार के औषधियां अन्न उत्पन्न होने लगी। पर्वतों में छिपे हुए मणि अपने आप प्रकट होने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जीव का स्वभाव चाहे कितना हो क्रूर हो सब बैरहीन हो गए और उनमें परस्पर मित्रता हो गई। तो इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी गोविंद का अभिषेक किया और उनकी अनुमति प्राप्त करके वे अपने लोक चले गए। इस प्रकार अति संक्षेप में गोवर्धन धारण की लीला यहाँ प्रस्तुत किया गया। चार अध्यायों की लीला 24, 25, 26, 27 चार अध्याय की कथा मैं संक्षेप में आपके सामने कहा। हरे कृष्ण। जय।